यशाया अध्याय 45, यशाया अध्याय 45 पद 1, यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको नेबुकदनेज़र की भविष्यवाणी के विषय में बताया था कि उसके घुटने आपस में टकराएंगे, दानियल 5:6, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। यहां परमेश्वर कहता है, राजाओं की कमर ढीली करूं। बेलशेसर के साथ ऐसा ही हुआ था। यशाया अध्याय 45 पद 1, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। बाबुल नगर दुश्मनों के लिए अपराजय था। उसकी शहरपना 300 फुट ऊंची थी और 80 फुट चौड़ी थी, जो नगर के 15 मील घेरे में थी। फरात नदी नगर के मध्य से बहती थी। चौड़े मार्ग नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। मार्ग के लिए फरात नदी पर 15 पुल बने हुए थे। नदी के ऊपरी किनारे पर भी दीवार बनी हुई थी। शहरपना में स्थित द्वार बाबुल नगर में लोगों के आवगमन के लिए केवल दिन में ही खोले जाते थे, रात को वे बंद कर दिए जाते थे। जब कुसरू मादी फारस सेना लेकर आया और उसने बाबुल को घेर लिया, तब बेलशसर अपने आप को इतना अधिक सुरक्षित मान रहा था कि उसने उसको चुनौती देने के लिए विशाल प्रीति भोज का आयोजन किया। वे महीनों पीते और खाते रहे, क्योंकि वे अपनी शहरपना में अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे। कुसरू ने जान लिया था कि उन 300 फुट ऊंची दीवारों को गिरा देना असंभव था, अतः उसने फरात नदी के पानी को नहरों द्वारा दूसरी दिशा में करने की योजना बनाई, और उन्होंने नदी के ऊपरी मार्ग की ओर जाकर पानी को नहरों द्वारा दूसरी दिशा में कर दिया। और उस रात जब बेलशेजर ने अपने दादा द्वारा यरूशलेम से लाए गए सोने के पात्रों को लाने का आदेश दिया था, उन्होंने फरात नदी को नहरों में काट दिया था। इस प्रकार सैनिक शहरपना के उस भाग से जहां से नदी बहती थी, नदी के किनारे किनारे नगर में प्रवेश कर गए। अब उनके सामने इन विशाल द्वारों और नदी के साथ खड़ी दीवार बाधक थे, परंतु उस रात ना जाने किस कारण सैनिक द्वार पर ताला डालना भूल गए थे। शायद वे प्रीति भोज में अधिक मदिरा पान कर गए थे। इस कारण कुसरू के सैनिक नगर द्वार से प्रवेश करने में सफल रहे और बाबुल नगर को जीतने में सफल रहे। कृपया ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने कुसरू के बारे में क्या कहा था, राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। ये 200 वर्ष तो नहीं, परंतु लगभग इस घटना के 180 या 190 वर्ष पहले की भविष्यवाणी तो है। परमेश्वर ने ये कहा था, उसने राजा कुसरू का नाम भी दिया था। यशाया अध्याय 45 पद 2 और 3, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। निश्चय ही उसने बाबुल के विशाल भंडार को लूटा। यशाया अध्याय 45 पद 3। जिससे तू जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर ये कहते हुए गर्व महसूस कर रहा है, तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। यशाया अध्याय 45 पद 3 और 4। मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इसराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। ये भी अति रोचक बात है कि परमेश्वर उस राजा के नाम की भविष्यवाणी भी कर रहा है, जो बाबुल की बंदवाई के बाद यरूशलेम के नव निर्माण की आज्ञा निकालेगा। परमेश्वर उसको मेरा चरवाहा कहता है और कहता है, तू ही वो है जो मेरे लोगों को उनके दासत्व से मुक्त कराएगा। मैंने सब जातियों को तेरे अधीन कर दिया है, मैंने फाटकों को खोल दिया है, आदि आदि। परमेश्वर उसे नाम लेकर पुकारता है और उसका विवरण भी देता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा, हे यदि तुम लोग ईश्वर हो तो पहले से बता दो कि क्या होने वाला है, जिससे कि जब वैसा हो तो हम जान ले कि तुम लोग ईश्वर हो। दूसरा कोई नहीं, मैं यहोवा हूं। मैं प्रतीकों को मिटा देता हूं, मैं वचन की पुष्टि करता हूं, और मैं कुसरू के लिए कहता हूं, वो मेरा अभिषिक्त है, वो मेरी सुइच्छा की पूर्ति करेगा। परमेश्वर की प्रेरणा के अतिरिक्त इस पुस्तक के लिखे जाने का अन्य कोई साधन नहीं था। यशया के लिए अपने आप में ये जान लेना संभव नहीं था। यशया के लिए कुसरू का नाम लिखना संभव था ही नहीं। ये तो परमेश्वर द्वारा ही दिया जा सकता था, जो समय की परिधि से बाहर है। वो सामर्थ्य है कि भावी मनुष्यों और घटनाओं को बताए, क्योंकि वो समय और संसार से बाहर रहता है। परमेश्वर मनुष्य से बातें करते समय उन बातों को बताता है जो होने वाली है, जिससे कि हम जाने कि वो परमेश्वर है, क्योंकि उसका कहा पूरा हुआ। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी है। इसमें शक नहीं कि ऐसे समयों पर बाइबल के आलोचक कहते हैं, यशाया 2 है जिसने ये लिखा, वो घटनाओं के बाद आया था। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यशाया अध्याय 45 पद 5 से लेकर 7 तक। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। परमेश्वर ने विपदाओं और विपत्तियों की रचना की है कि वे दुष्टों पर आ पड़े। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। यशाया अध्याय 45 पद 8 और 9। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वो तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है। परमेश्वर ने हमें वो सब बता दिया है जो उसने किया है, और सब कुछ जो वो है। अब वो कहता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। मनुष्य का परमेश्वर से झगड़ना तो मूर्खता की अति है। हाय उस मनुष्य पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। फिर भी कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से झगड़ते रहते हैं, वे परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, वे परमेश्वर से दूर भागते हैं। हाय उस पर जो अपने स्वामी से झगड़ता है। मनुष्य परमेश्वर से क्यों झगड़ा करे? इसका एक ही कारण है कि उसके मन में परमेश्वर के लिए अनुचित धारणा है। मैं तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर से झगड़ने का यही एक कारण समझ पाता हूं कि उसके मन में परमेश्वर के लिए एक अनुचित धारणा बन चुकी है। यदि आपके मन में परमेश्वर के लिए एक उचित धारणा है तो आप उसे झगड़ना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि तब आप ये जान लेंगे कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास जो योजना है वो सबसे अच्छी है जो कभी आपके जीवन में आई। झगड़ा क्यों करें? परमेश्वर ने कहा, यरमिया 29 अध्याय 11 पद, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, फिर क्यों झगड़ा किया जाए? परंतु हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, क्योंकि वो अपने कुशल के विरुद्ध झगड़ता है। कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो परमेश्वर से झगड़ते हैं, और यदि वे विजय पाते हैं तो वो उनकी पराजय है, परमेश्वर कहता है। उत्पत्ति अध्याय 6:3, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, परंतु मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से और अपने मन में उसके कार्यों से विवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे मसीह यीशु का त्याग करते हैं और उसका इनकार करते हैं। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। परमेश्वर के न्याय का शाप उस मनुष्य पर पड़ेगा जो विवाद करके जीत जाता है। यदि आप इनकार करते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित करने से इनकार करते हैं, तो आपके लिए कैसा दंड और शाप पक्का है। वो मनुष्य कैसा मूर्ख है जो परमेश्वर से झगड़ता है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। यशाया अध्याय 45 पद 9, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? चाक पर कुछ मिट्टी घूम रही है, कुम्हार उसे रूप देने की तैयारी कर रहा है। वो उसे रूप देना आरंभ करता है तो मिट्टी कहती है, ऐसा तू मुझसे क्या बना रहा है? मिट्टी के पास तो अपने भाग्य पर अधिकार नहीं होता है, ये केवल कुमार के हाथ में होता है कि वो मिट्टी से क्या बनाए। इसी प्रकार हमारे पास भी अपने भविष्य पर कोई अधिकार नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में मिट्टी स्वरूप है। उसमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें रूप देने की क्षमता है। पर हाय उस पर जो अपने रचना करने वाले से झगड़ता है, जो अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को चुनौती देता। मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं वो काम करना नहीं चाहता, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आपके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, एक योजना है, जिसको आप तभी पा सकेंगे जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देंगे। कुम्हार के मन में ये रहता है कि मिट्टी को क्या रूप प्रदान किया जाए। मिट्टी अपने आप में तो कोई कीमत नहीं रखती है। मिट्टी तो पृथ्वी की सबसे साधारण वस्तु है, परंतु कुम्हार के हाथों में आ जाने के बाद उसी मिट्टी की कीमत बढ़ जाती है। यदि कुम्हार प्रवीण है तो वो उस निर्मल मिट्टी को बहुमूल्य एवं अति योग्य बना सकता है, परमेश्वर की प्रवीणता का इनकार कौन कर सकता है? वो तो सबसे बड़ा कुमार है। वो हमारे जीवन को जो किसी कीमत का नहीं, मगर परमेश्वर हमारे जीवन को अनोखा बना सकता है। यदि परमेश्वर हमें अपने उपयोग और अपने उद्देश्य के निमित्त एक पात्र बनाता है, तो हम बड़ी कीमत और बड़े सम्मान की रचना तैयार हो जाते हैं। अतः परमेश्वर मेरे जीवन को जैसा बनाना चाहता है, वो परमेश्वर के मन में पहले से है। मैं अपने प्रति उसकी योजना को तभी जान पाऊंगा जब मैं अपना जीवन उसे दे दूंगा। वो निश्चय ही मिट्टी की मूर्ता को दर्शाता है कि वो कुमार का विरोध करती है या कुमार को निर्देश देने की कोशिश करती है। यशाया अध्याय 45 पद 10 से लेकर 13 तक। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और मां से कहे, तू किसकी माता है। यहोवा जो इसराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष कुसरू को धार्मिकता में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वो मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर करेगा। वो पैसे के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं, घूस के लिए नहीं, परंतु मैंने उस उद्देश्य के साथ उठाया है। परमेश्वर ने उन्हें उस उद्देश्य के लिए बनाया। यशाया अध्याय 45 पद 11 में यहोवा हमें चुनौती देता है कि हम भावी घटनाओं के विषय में उससे पूछें, क्या मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे। इस पद का ये अर्थ नहीं, जैसा अनेक जन सोचते हैं, कि हम परमेश्वर को पृथ्वी पर किसी काम को करने की आज्ञा दे सकते हैं। परमेश्वर को एक महिमाशाली क्रिसमस फादर मानना जो स्वर्ग में आसीन है, ये परमेश्वर के प्रति एक अनुचित धारणा है, और प्रार्थना को अपनी इच्छा पूरी करने का साधन मानना प्रार्थना के विषय में एक अनुचित धारणा है। प्रार्थना का वास्तविक बल और उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यदि मैं प्रार्थना का प्रयोग अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु करता हूं, तो मैं दूसरे शब्दों में जगत पर राज कर रहा हूं। तब तो मैं अपने जीवन के विषयों को और अपने साथ अन्य उपस्थित जनों के जीवन के विषयों को दिशा दिखाते हुए उनका नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूं। मिट्टी अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करेगी, परंतु सत्य तो ऐसा नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित हो एवं उसके उद्देश्यों के सामंजस्य में हो। मेरे जीवन में उसकी योजनाएं मेरी बुद्धि से परे कहीं अधिक बुद्धिमानी की होती है। किसी परिस्थिति के विषय में परमेश्वर का ज्ञान मेरी समझ से कहीं अधिक है। अतः ये केवल मूर्खता ही होगी कि मैं परमेश्वर को किसी काम के करने में अपनी समझ के अनुसार निर्देश दूं कि वैसा ही होना आवश्यक है। ऐसी प्रार्थना से तो मैं 10 मिनट में संपूर्ण संसार को बर्बाद कर दूंगा। मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं, परमेश्वर का काम होना है। अतः परमेश्वर कुसरू के लिए घोषणा करता है, मैंने उसे उभारा है। यशाया अध्याय 45 पद 14 से लेकर 17 तक। यहोवा यो कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार के लाभ और सबाई लोग जो ढील डौल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे, वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इसराइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इसराइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। क्या परमेश्वर इसराइल का त्याग करेगा? कभी नहीं। अनंत युग तक वो संसार में उनके साथ व्यवहार बनाए रखेगा। परमेश्वर का अनंत कार्य और उद्धार उन्हें प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं, मैं यहूदियों को पसंद नहीं करता। ये पक्की बात है कि परमेश्वर उन्हें चाहता है और उसने उनके साथ काम करने की प्रतिज्ञा की है। यशाया अध्याय 45 पद 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। कुछ लोग हैं जो धर्मशास्त्र के इस भाग को अंतराल सिद्धांत के पक्ष में प्रयोग करते हैं। ये सिद्धांत उत्पत्ति अध्याय 1 के पद 1 और 2 के मध्य के अंतराल से संबंधित है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा पद है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अनेक धर्मशास्त्री सोचते हैं कि इन दो पदों के मध्य बहुत लंबा समय था और इस समय परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों की रचना की। उस समय शैतान भी स्वर्ग दूतों में था। इसी समय शैतान ने परमेश्वर की और उसके अधिकार की अवज्ञा की। पद एक में परमेश्वर की मूल सृष्टि की घोषणा है और इन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पद दो का अर्थ लगाना और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और गहरे जल पर अंधियारा छा गया तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उत्पत्ति के अध्याय एक के और दो पद के इस असीमित समय को मान ले तो उन सब अवशेषों का उत्तर प्राप्त हो जाता है जो करोड़ों वर्षों पुराने हैं। इसी विचार को सिद्ध करने के लिए वे इस पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे अनेक पद हैं। उन पदों में ये एक पद है जिसमें परमेश्वर घोषणा करता है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है, या यों कह ले, मैंने उसे बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था। अब परमेश्वर द्वारा किसी वस्तु की सृष्टि बेडौल और सुनसान परमेश्वर की सृष्टि में कुछ असंगत सी प्रतीत होती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और कहा अच्छा है। अतः परमेश्वर ऐसी वस्तु की रचना करे जो बेडौल और सुनसान है तो वो परमेश्वर का सृजन स्वभाव अच्छा है के साथ सुसंगत नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ उसने बनाया था अच्छा है। इस कारण उनका मानना यह है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की थी तब उस पर प्रागैतिहासिक या लिखित इतिहास के पहले का समय प्राणियों का वास था। आदम तो आधुनिक मानव का मूल पुरुष था, परंतु ये अति संभव है कि उत्पत्ति से और परमेश्वर के इस पुनः सृजन कार्यों से पूर्व अन्य प्राणी थे जो इस पृथ्वी पर वास करते थे, और ये संभव है कि शैतान उस समय पृथ्वी पर राज करता था। इस युग में जो पद एक और दो के मध्य है, एहेस्केल की पुस्तक में शैतान के विषय में लिखा है, एहेस्केल 28 अध्याय 13 से 15 पद। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मर्दक और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इसके बाद वो उसके बहिष्कार आदि का उल्लेख करता है। वो उन पदों में से एक है। परमेश्वर ने कहा, मैंने पृथ्वी को बेडौल नहीं बनाया, मैंने उसे सुनसान नहीं बनाया, मैंने उसे बसने के लिए बनाया है। यह है वो व्याख्या जो पद एक और पद दो के बीच के समय की जो विचारक प्रस्तुत करते हैं। अर्थ्स अर्लियस्ट एजस पेम्बर की अंतराल के सिद्धांत के पक्ष में सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि वो इस पुस्तक में उत्तम तर्क भी प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर डॉक्टर मॉरिस ने भी एक पुस्तक लिखी है, द जेनेसिस रिकॉर्ड, जिसमें वो ये नहीं मानते हैं कि पद एक और दो के मध्य कोई अंतराल रहा था। उन्होंने स्वर्ग दूतों की रचना और शैतान के पतन का समय ज्ञात करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि जब शैतान अपने पतित रूप में मनुष्य के पास उसे प्रलोभित करने आदन की वाटिका में आया था, तब मनुष्य को आदन की वाटिका में अधिक समय नहीं हुआ था। अब यदि डॉक्टर मॉरिस का विचार सही है कि सब कुछ 2000 से 6000 वर्षों के मध्य हुआ, इसी समय में सृष्टि की गई, शैतान का पतन हुआ और अन्य सब कुछ हुआ जो मॉरिस के विचारों को कठिनाइयों का सामना करना होगा। अंतराल के सिद्धांतों में भी तो अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु मेरे विचार में दोनों ही प्रशंसनीय हैं। अब आप कहेंगे, यदि हम केवल 7000 वर्ष पूर्व ही रचे गए हो तो इन अवशेषों के विषय में हम क्या कहें जो कार्बन द्वारा समय निर्धारित है। यदि कार्बन के द्वारा समय के ज्ञान में चूक हो सकती है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसकी उम्र क्या थी? वो एक दिन की आयु का रहा होगा, परंतु उसका अस्थि पंजर तो व्यस्कों का था। उसके दांत होंगे और मांस पेशियां होंगी, अतः परमेश्वर ने उसे एक व्यसक बनाया होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उसमें समय दिखाने के तत्व अवस्थित रहे होंगे। आप उसके दांतों को देखकर कह सकते थे कि उसके दांतों से वो 30 वर्ष का लगता है। यद्यपि उसकी आयु एक दिन की थी, उसमें समय की गणना के तत्व उपस्थित थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था, तब पृथ्वी में भी समय की गणना के तत्व उसने बनाए थे। ये अवशेष जो प्राप्त होते हैं, उनकी रचना मनुष्य को भ्रमित करने के लिए की गई थी। आपका परमेश्वर कितना विशाल है यदि उसने मनुष्य की रचना समय की गणना के तत्वों के साथ की थी तो उसने पृथ्वी की सृष्टि भी समय की गणना के तत्वों के साथ की होगी। आइए हम इस विषय को विद्वानों के लिए छोड़ दें। यशाया अध्याय 45 पद 19 और 20। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वे जो ऐसा करते हैं वे अज्ञानी हैं। यशाया अध्याय 45 पद 21। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हां वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। मनुष्य परमेश्वर के बारे में अपनी व्याख्याएं बना सकता है परंतु वे उचित नहीं हैं। परमेश्वर के विषय अपनी धारणा बनाने में वो अपनी कल्पनाओं का परमेश्वर बना डालता है जो उसके ही रूप में होता है। उसमें परमेश्वर का एक मानवीय रूप अवस्थित रहता है। यहां मनुष्य भूल जाता है कि परमेश्वर ने स्वयं को उद्घोषित किया है, प्रकट किया है, और बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। देखिए यहां हमारे पास परमेश्वर का महिमा संपूर्ण विस्मयकारी वर्णन है। उसने कहा मुझे देखो, इसलिए उसने कहा क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। यशाया अध्याय 45 पद 22 और 23। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा है मैंने अपनी ही शपथ खाई, वचन उसके मुख से निकल गया, अब वो लौटेगा नहीं, वो पूरा होकर ही रहेगा। क्यों? यशाया अध्याय 45 पद 23 के अंत में लिखा है प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रेरित पौलुस फिलिपियों में कहता है, फिलिपियों दूसरा अध्याय 5-11 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर कहता है कि उसकी एक घोषणा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई। यशाया अध्याय 45 पद 24। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध कहा था उनके लिए लज्जा की बात है। यशाया अध्याय 45 पद 25। इसराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। ये बहुत सामर्थ्यवान वचन है। पिता, हम तेरे वचन की अटलता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, उसके सृष्टिकर्ता, हम तेरे सन्मुख विस्मय और श्रद्धा से पूर्ण खड़े रहते हैं, जिसने पूर्व की बातों को बताया है और आने वाली बातों को भी प्रकट किया है। हे प्रभु, हम तेरे सामने घुटने टेक कर अंगीकार करते हैं कि तू ही प्रभु है। तेरे सामने दूसरा कोई नहीं है। तेरे तुल्य कौन है प्रभु, जो महानता, वैभव, सामर्थ और महिमा में तेरे समान हो? निश्चय ही प्रभु, आदर और प्रभुता तेरे ही है। स्तुति और आराधना तुझे ही अर्पित करना है। हे प्रभु, हमारे होंठों को खोल कि हम तेरे नाम का स्तुति गान करें। हमारे मन को खोल कि हम प्रभु आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करें। और प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम ये जानते हुए कि तेरी विधियां उत्तम है, तुझे ऐसा समर्पण करें जैसे मिट्टी कुमार के हाथों में, ये जानते हुए कि आपके ही मार्ग हमारे लिए सर्वोत्तम है। और इस प्रकार हमारे जीवन आत्मा के स्पर्श के लिए खोल दें, जिससे कि तू हमें वो बनाए जो तू हमें बनाना चाहता है। ऐसे पात्र प्रभु, जो महिमा के लिए है और तेरे नाम को स्तुति और महिमा लाने वाले हैं। प्रभु, तू परमेश्वर है, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु के नाम में।